الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فأدى خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ پاک کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہے ایک ایمان والے کو بحیثیت مومن و مسلم اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور یہ چونکہ قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے تو پہلی بات جاننی چاہیے کہ یہ 12 ہیں اور چونکہ ہماری عبادتیں قمری اور چاند کے مہینوں سے متعلق ہیں تو اس کی ان مہینوں کی ابتدا کب ہے اور انتہا کب ہے مہینے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں ان سب کا علم ہونا چاہیے یہ چونکہ اصلاحی مجلس ہے اس لیے متفرق اور منتشر باتیں اصلاحی کی جو اللہ پاک دل میں ڈالے اس کو پیش کرنے کی کوشش ہوگی تو پہلی بات ایمان والوں کو چاہیے کہ اسلامی مہینوں کے سلسلے میں بھی آگاہی حاصل کریں تو مہینوں کی تعداد 12 ہے تاریخ میں ایسے بھی کمبخت اور بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس ارشاد کے خلاف بھی کہا ہے چنانچہ آج بھی ایک فرقہ ہے جو 19 کو ماننے والا ہے ان کے یہاں مہینوں کی تعداد 19 ہے اور ہر مہینہ 19 دن کا ہے ایسے بھی لوگ تھے اور اب بھی ہیں یہ بالکل اسلامی نظریات سے ہٹی ہوئی چیز ہے قرآن کے صاف اس کی صراحت اور اس کی وضاحت کے خلاف چیز ہے لیکن ایک طبقہ ہے کہ مان رہا ہے اب ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی مہینے کون سے ہیں اس کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے جاتے جاتے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں آج محرم کی تیسری رات شروع ہوئی ہے تو جمعہ کا دن پہلی تاریخ تھی اگر وہی انگریزی سال شروع ہو کے ہوتا تو معلوم نہیں کتنی طرف سے ہیپی نیو ایئر کے پیغامات آتے اور ملتے ملاتے ایک دوسرے کو وش کرتے ادھر سے ہیپی وش یو ہیپی نیو ایئر तो उधर से सेम टू यू सेम टू यू के जवाब बात का सिलसिला चलता था। लेकिन इस्लामी महीना इस्लामी साल शुरू हुआ, इतने नौजवान हैं जिनको ये पता चला कि आज इस्लामी साल का ही आगाज हुआ है, तो ये कितनी बड़ी कमी की बात है। जिसको कुरान 12 महीने बताए, वो महीने कब शुरू हो रहे हैं कब ख़त्म हो रहे हैं ये भी हमको पता नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का जानना पहचानना मानना ये भी ज़रूरी है। तारीखों पर हमारा मदार है। तो एक ये मौजू है, उसमें बीच की आयतों में मिन्हा अरबातुन हुरुम, चार काबिल एहतराम महीने हैं। तीन महीने मुसलसल हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम का महीना, और एक महीना कुछ फासिले के बाद रजब का महीना है जो जुमादुल उखरा और शाबान के दरमियान आता है, ये चौथा महीना है। इस इन महीनों के सिलसिले में ज़्यादा तफसीलात हैं, मैं उन सब से हटते हुए इतनी बात अल्लाह तबारक व ताला जो फरमा रहे हैं, फला तजलिमु फीही अनफुसक, ये है असल, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। हम अपने ऊपर क्या जुल्म करेंगे? हाँ, हर गुनाह ये जुल्म है। तो बंदा जो भी गुनाह करे वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, उसे महसूस हो ना महसूस हो, हर गुनाह ये जुल्म है। अल्लाह फरमाते हैं फला तजलिमु फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो। तो इंशाल्लाह आज की मजलिस में हम इसका अहद करेंगे कि इंशाल्लाह ये मुहर्रम का महीना बगैर गुनाहों के गुजरे इंशाल्लाह। और चूंकि साल का आगाज और इब्तिदा है, हर चीज की इब्तिदा में कसर है, अगर इंसान उसका लिहाज रख ले, दिन की इब्तिदा होती है अगर उसको संभाल ले, तो अल्लाह तबारक व ताला बकिया जी दिन के हिस्से को आफियत के साथ सलामती के साथ गुजारते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर हाज़ल यौम फतहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा व नऊज़ बिका मिन शर्रिहि व मिन शर्रि मा फी। तो इस दिन की हिदायत, इस दिन की बरकत, इस दिन की खैरियत, इस दिन की आफियत अल्लाह जल्ल जलालुहु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं। तो मतलब यह है कि या अल्लाह, ये दिन का आगाज है, इसको हम पे खैर आफियत के साथ तू तुलू फरमा। सूरज निकलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकालना यौमना हादा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिना, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकालना यौमना हादा, तमाम शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आज का ये दिन हम पर तुलू किया है और हमारे गुनाहों की वजह से हमको हलाक नहीं किया है। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग हैं करोड़ों की तादाद में फजर की नमाज छोड़ के सोते हैं, अल्लाह चाहे तो यूं ही खत्म कर दे, हो सकता है अल्लाह की कुदरत है, लेकिन अल्लाह दोबारा उठा रहे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमारी इस नाफरमानी की वजह से, इस नहूसत की वजह से, हक तो यह था कि आप हमको खत्म कर देते, लेकिन आपने अपनी मेहरबानी से हमको दोबारा जिंदगी और ज़िस्त अता फरमाई। तो इसलिए इन आमाल की हिफाजत होनी चाहिए। तो साल का आगाज है तो हम अज़्म और इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला इसके इब्तिदाई हिस्से की भी हिफाजत करेंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला पूरे साल को खैर आफियत का साल बनाएंगे। चांद, नया चांद देखते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नि वल ईमान या बिल अमनि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम, अल्लाह इस चांद को हम पे तुलू फरमा युम्न बरकत के साथ, अमन के साथ, ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, सलामती के साथ, इसको तुलू फरमा। तो ये दुआएं क्यों मांगी जा रही हैं कि ये महीना हम पे खैर आफियत का महीना हो, सलामती का महीना हो, बरकत का महीना हो, अमन अमान का महीना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ में एक पैगाम है, एक सबक है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दुआओं से सबक हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो पहली बात यह है कि इन महीनों में हम गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह खुद फरमाते हैं तो अल्लाह के हुक्म को मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हदीस पाक पढ़ी गई, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع اور ایک مجلس میں فرمایا، میں یاخذ عنی ہاؤلائی کلمات، کچھ چیزیں کچھ باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ کون مجھ سے حاصل کرے؟ فیعمل بہن، اور ان پر عمل کریں گے، یا پھر یعلم من یعمل بہن، ایسوں کو پہنچائیں گے اور ایسوں کو سکھائیں گے جو ان باتوں پر عمل کریں گے، کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کے کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پانچ چیزیں گنائی، فاخذ بیدی فادى خمسا، پانچ چیزیں شمار کرائی اور گنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو تو سب سے بڑے پرہیزگار عبادت گزار بنو. سب سے بڑے پرہیزگار عبادت گزار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے عمل، بہت ساری چیزیں، بہت سارے وظیفے، لمبی چوڑی تفصیلات یہ نہیں بتائی. حرام سے بچو، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن سمندر سمویا ہوا ہے. آج پوری دنیا کا جو بگاڑ ہے، پوری دنیا میں جو خرابی ہے، اس کی جڑ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑ دی اور ختم کر دی. حرام سے بچو، عبادت گزار، پرہیزگار اور سب سے بڑے بن جاؤ. پہلی بات، یہ بولنے کو بہت آسان لیکن کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ زمانہ ویسا ہو گیا، ہر جگہ گناہوں کا چلچلاؤ ہے، رواج ہے، اور بلکہ آگے بڑھ کر اس کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے. گناہ گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ انسان سے گناہ ہو اور اس کا احساس بھی نہ ہو، دل مردہ ہو جاتے ہیں، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو مزاج بگڑ جاتا ہے، اچھی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے، نصیحت کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے. جب انسان کا ظاہر بدن خراب ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی نظر آتی ہے، ویسا ہی اس کا دل بگڑتا ہے، اندرون خراب ہوتا ہے، تو اس کو نصیحت بری معلوم ہونے لگتی ہے. نصیحت کرو تو غصہ آتا ہے. آج ہر دن یہ بات سننے میں آتی ہے، لوگ بولتے ہیں حضرت ہمارے بیٹے کو نصیحت کرو، حضرت ذرا سمجھاؤ، حضرت کیا بولے تو بھی سمجھتا نہیں، حضرت ہم نہ گھور کو دیکھتا، حضرت ہم نہ باتاں کرتا، حضرت بعض بچے تو ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ معاف کرے، کیا کیا کرتے. کیوں؟ اچھی بات ان کو بری لگ رہی، کڑوی لگ رہی. اب یہ جو ماحول بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ماحول ہے. اغیار اور غیر گناہ کریں، اس میں اور ایمان والے گناہ کریں، دو میں بہت فرق ہے. دوسروں کو اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کو ہے. اب ایمان والوں سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ایسا بھڑکتا ہے جس طریقے سے کھولتے ہوئے تیل میں کوئی پانی چھڑکے، جس طریقے سے وہ چیز بھڑکتی ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھڑکتا ہے. اب یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، گناہوں کا ماحول، اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. اب دنیا کی رنگریلیاں سامنے آ رہی ہیں، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع، دنیا کی خوشی، دنیا کی ہنسی، یہ سب چیزیں آخرت پر پردہ ڈال رہی ہیں. ایک حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ صحابی اس خطبے کو ایسے ہی روایت کرتے ہیں، بہت مختصر خطبہ ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کر دی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا، صاف صاف باتیں، کھری کھری باتیں، ایک دم کاشن، ایک دم صاف طور سے سٹیٹرنگ وارننگ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انت دنیا ارض حاضر یاکل منہ البر والفاجر اللہ ان الاخرت عجل صادق یقضی فیہا ملک قادر اللہ ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ اللہ ان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر واعلموا انکم معرضون علی اللہ بعمالکم فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ. یہ بس خطبہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گھنٹے گھنٹے کے بیانات نہیں ہوتے تھے, لمبی چوڑی تقریریں. آج مزاج بھی بن گیا ہے, سنتے سنتے کان سند ہو گئے ہیں, اللہ معاف کرے. اثر لینے کا بھی نہیں بلکہ ٹیسٹ لینے کا ماحول بن گیا. انہوں کیسا بولتے, انہوں کیسا بولتے, انہوں کیا بولتے, انہوں کیا بولتے, یہاں جا کے دیکھیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے. یہ ایک مزاج بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی خطبہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا لوگو سنو, یہ دنیا کیا ہے؟ ارض حاضر, ایک نقد سودا ہے, ایک مال ہے, بکتا ہے, نفع آتا ہے, نقصان ہوتا ہے, نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے دنیا کا معاملہ ہے, نفع نقصان دکھ رہا ہے, یہ صاف صاف معاملہ ہو رہا ہے, نقد سودا ہے. لیکن اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہو, یہ سب چیزیں سب اٹھا رہے ہیں. یاکل منہ البر والفاجر, یہاں سے نیک لوگ بھی کھا رہے ہیں, برے لوگ بھی کھا رہے ہیں, مومن بھی کھا رہے ہیں, کافر بھی کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں, سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو بھی ہے یہاں کا معاملہ تو یہ ہے. لیکن آخرت کیا ہے؟ ان الاخرت اجل صادق, ایک سچی حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے. وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جہاں پر کچھ دھاندلی ہو, چال بازی ہو, یا انسان کچھ بھی کر سکے, کچھ بھی نہیں. صاف صاف کلیئر کٹ چیز ہوگی وہاں پر. یقضی فیہا ملک قادر, جہاں پر فیصلہ کرے گا بادشاہ. کیسا بادشاہ؟ جو قدرت والا ہے, جو ڈرائے تو ڈرتا نہیں, چمکائے تو چمکتا نہیں, اسے سم تھنگ دکھائے تو بھی کیا بھی نہیں, نتھنگ, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آج دنیا میں بڑے بڑے کام جو ہے بڑے بڑے گھپلے ہو جاتے ہیں, ایسے گھپلے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہم لوگ ایک ملک میں تھے تو وہاں کے ایک محکمے کے بڑے, انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات, جو ویدر بتانے والا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جتنا بڑا گھپلا کرتا ہے اور جتنا بڑا رشوت کا معاملہ وہ کرتا ہے, اس سے زیادہ شاید کوئی اور محکمہ کرتا ہوگا. تو ہم کو بہت تعجب لگی وہ بات کہ یہ محکمہ جا کر کیا گھپلا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ طوفان اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, اتنا قریب آ گیا ہے, اور یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو اس طریقے پر جب یہ رپورٹ دیتا ہے تو گورنمنٹ والے, حکومت والے, وہ ڈر کے اپنے جہازوں کو ہٹا لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اپنی چیزوں کی حفاظت کر لیتے ہیں, اور باقی جو اسمگلرز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, ان کے لیے پورا راستہ صاف کر کے دے دیتے ہیں, اور پھر اس کی ان سے بڑی بڑی رقمیں یہ لے لیتے ہیں. اب جب یہ حال ہے, اتنے بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہوں, ایسی دھاندلیاں ہو رہی ہوں کہ حکومت کی آنکھوں پر بھی جو دھول جھونکی جا رہی ہو, ان کو بھی جو ہے لا علمی میں رکھا جا رہا ہو, تو دنیا میں ایسا ہے لیکن آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہے. صاف صاف ہے, یقضی فیہا ملک قادر, وہاں فیصلہ کرے گا بادشاہ جو قدرت والا ہے. اب اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کی حکومت بھی بے قدرت ہے, یہ بھی ناکام ہو گئی ہے, اسے بھی انجام کا علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, بے خبر ہے یہ. لیکن اللہ جل جلالہ کا حال ویسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قدرت والے, پوری گرفت والے. اس لیے اللہ اس دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے, کون ہے, بولو, آج کون فیصلہ کرنے والا؟ اللہ. کوئی جواب نہیں. سارے بادشاہ, سارے وزراء, سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ خود فرمائے للہ الواحد القہار, ایک اللہ جو قہار ہے, جلال و جبروت کے ساتھ اللہ ہوں گے, پورے قہر کے ساتھ, اس اللہ ہی کی حکومت آج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لیے اس کو سن لو. آج دنیا میں سہولتیں ہیں, راحتیں ہیں, یہ عیش و عشرتیں ہیں, زیب و زینتیں ہیں, ये सब लाइन की जितनी भी चीजें हैं सुन लो, अल्लाह तबारक व ताला ने सारी चीजें जन्नत में रखी हैं। अल्लाह इन्नल खैर कुल्लहु बिहज़ाफिरिही फिल जन्ना, सारा खैर, सारी भलाइयां, सारी राहतें, सारी सहूलतें, सारी जीनतें, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, फिरने की, सवारियों की, लिबास की, जितनी चीजें हैं ये सब अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत में रख दी हैं। आज किताब फलट फलट को देखो तुम, ये एक बुजुर्ग फरमाते हैं, खुर्दन बनाए जीस्तनो जिक्र कर देना, खाना जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए और अल्लाह को याद करने के लिए। लेकिन हजरत दूसरे मिसरे में फरमाते हैं, तू मोतकिद के जीस्तन बहरे कुर्दन, तेरा ख्याल ऐसा होगा है जीना ही खाने के लिए। अल्लाह हो, कई को जीते खाने के वास्ते, कई को खाते जीने के वास्ते, ये हाल हो गया। तो खाना इसके लिए है कि ताकि हम जिंदगी गुजार सके, जी सके, हमारे तन बदन में कुछ ताकत रह सके और अल्लाह को याद कर सके। लेकिन मकसद ही उल्टा हो गया, जीना ही खाने के लिए हो गया। तो अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सारी उसकी शक्लें हैं, अल्लाह देंगे, लेकिन जरा सब्र करो। जितनी चीजें हैं, जितनी लाइन की चीजें हैं, वो सब अल्लाह ने वहां रखी है। और इसके बरखिलाफ अला इन शर्र कुल्लहु बिहज़ाफिरिही फिन्नार, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी तंगियां, ये सब चीजें अपनी तमाम किस्मों के साथ अल्लाह ने जहन्नम में रख दी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यहां हम थोड़ी परेशानी बर्दाश्त नहीं करते, न धूप बर्दाश्त करते हैं जी, न भूख बर्दाश्त करते हैं, न कोई और तंगी तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, कुछ भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वह वेला मचाना शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यहाँ की तकलीफ क्या है, यहाँ की तंगी क्या है, यहाँ की परेशानी क्या है, सारी चीजें वहां अल्लाह ने रख छोड़ी है। तो असल में बचना वहां से है, वहां की एक एक घाटी। ये हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु गमजदा बैठे, बहुत इबादत गुजार साहबी, उनके वाकयात बड़े हैं, तो बहुत गमजदा बैठे हैं। किसी ने पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, किसी चीज का गम है क्या, कोई चीज छूट गई क्या, कोई चीज आपको मिली नहीं क्या? तो फरमा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? तो फरमा आखिरत की घाटियां बहुत गंभीर हैं, बहुत भयानक हैं जी। इसका एहसास उनको था तो वो सोच सोच के परेशान और बहुत फिक्रमंद होकर बैठे हुए। तो ये इस्तेहजार अल्लाह तबारक व ताला हमें अता फरमाए। फिर तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, आखिरत में जो भी है फैसला होगा, ये आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं, कल हिसाब का दिन होगा, अमल नहीं। तो इसलिए यहाँ के अमल का हिसाब वहां होगा, तो जो भी अमल करो तो अल्लाह से डर के करो। फामलु अंतुम मिन अल्लाह अला हज़र, अल्लाह से डर के करो चाहे छोटा ही अमल हो, तो अल्लाह जल्ले जलालु उसी को देखेंगे और तुमको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। व इन्नकुम मुअरदूना अलल्लाह बि आमालिकुम, तुम्हारे अमल की बुनियाद पर तुमको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। तो इसलिए जो भी दुनिया में जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा वो उसको देखेगा। फमै यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मै यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इसके बरखिलाफ जो जरा बराबर भी बुराई किया हो, गुनाह किया हो, उसको भी वो देख लेगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाया। तो पूरी हमारी जिंदगी का एक खुलासा, एक निचोड़ है। तो इसलिए बुजुर्गों, आज के जमाने में गुनाहों से बचना एक चैलेंज है। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी। इसलिए मुतमईन होकर बैठने का यह जमाना नहीं है। गुनाहों की शक्लें बहुत हो गई हैं, आम हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, आसान हो गई। लम्हों में इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। ये आजिज बार बार इस बात को दोहराता है, आप मस्जिद में एक घंटा रहें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, दुआ करें, तालीम करें, मशवरा करें, जो भी करें, एक घंटा आप अंदर रहें, अभी आपके कदम बाहर नहीं जाते, आपकी नजर बाहर चली जाती, और ये बदनजरी ये घंटे की उस नूरानियत पर पानी फेर के रख दे, पूरी कैफियत खत्म हो जाती है, बिल्कुल दिल खाली खाली हो जाता है। क्या करें कुछ नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं, ऐसा हिसाब हो जाता है। तो इसलिए आज जो गुनाहों की शक्लें हैं, और ख़ास तौर से अल्लाह बचाए सबको बचाए, इस मोबाइल ने तो सत्यानाश करके रख दिया है। अखलाक को, अकदार को, अमाल को, ईमान को, सबको खराब कर दिया। हैरत होती है बुजुर्गों, आज दुश्मन हमको निशाना बनाकर किस तरीके से लम्हा ब लम्हा वो अपनी प्लानिंग में जी, वो अपने मंसूबों में, मंसूबे क्या बल्कि साजिशों में, अपनी कोशिशों में वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, रोज के रोज हम हालात देख रहे हैं किस तरीके से तेजी के साथ बदल रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अरब अजम में हो, हमारे मुल्क में हो, किस तरीके से आजमाइशों जी में घिरी हुई है। दुश्मन तो लम्हा ब लम्हा हमको निशाना बना के आगे बढ़ रहा है, और हम हैं कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, जरा बराबर भी हमारे अंदर न गीरत है, न हमीयत है, न एहसास है, नी बिल्कुल बेबसी का आलम। अल्लाह माफ करे, बहुत डर लगता है, कुरान की आयतों को पढ़ने में भी डर लगता है। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न मक्कन्नाहु फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना समा अलैहिम मिद्रारा व जअलना अल-अन्हार तजरी मिन तहतिहिम। उसके बाद में अल्लाह फरमाते हैं फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बादिहिम क़ौमन आख़रीन। क्या उन्होंने नहीं देखा? अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, कि हमने उनसे पहले उम्मतों को, कौमों को और मिल्लतों को किस तरीके से हलाक किया, क्यों किया? मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम, हमने उनको इतनी नेमतों से नवाजा था जी, हुकूमतें दी, माल दौलत के नक्शे दिए, सारी सहूलतें दी, सब चीजें हमने दी जितनी तुमको नहीं दी थी। क्या हुआ? हमने ऊपर से मौसलाधार बारिशें बरसाई, उनके नहर नीचे से नहरें जारी फरमाई, तो सहूलतों की, राहतों की, खुशहाली की सारी शक्ति हमने उनको अता फरमाई, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने हमारी नेमतों को नहीं पहचाना, ना शुक्री की, ना कदरी की। अल्लाह फरमाते अहलक ना हूं भी जुनू भी हूं, हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया, तहस नहस कर दिया। वो अंशा ना मिम्बाद ही कौमा ना करीन, उनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहु, उन्होंने खुद फरमाया कि वो एक मरतबा तुर्की गए और वहां का जो बड़ा म्यूजियम है कैप्टोपे म्यूजियम, वहां गए और पूरी चीजों को देखा, महलात को देखा, ये देखा वो देखा। देखने के बाद हजरत फरमाते मैं आकर बैठ गया, बहुत देर में खामोश होकर सोचता रहा, या अल्लाह जो खिलाफत सदियों चली, जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, आज क्यों ऐसा वक्त आया है? या अल्लाह ये सल्तनत खिलाफत खत्म हुई, आज यहां अल्लाह का नाम लेना इतना मुश्किल हो गया, अल्लाह क्या बात है? मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने जब देखा वहां के दरों दीवारों को, तो उसमें सोने चांदी के बेल बूटे हैं, दीवारों पे, दरों पर सोना किलो किलो के हिसाब से, ढेर ढेर के हिसाब से लगा हुआ। जब मैंने ये देखा तो महसूस किया कि शायद इसी वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये नेमत उनसे छीन ली, कि इन नक्शों में पड़ गए हैं और असल जो जिम्मेदारी थी उससे जो है उसको भुला बैठे हैं, सर्फ नजर कर गए हैं, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये नेमत ले ली। अल्लाह माफ फरमाए। उंदलुस बार बार बोलते रहते हैं, स्पेन और उंदलुस, सदियों वहां पर ये मुसलमानों की हुकूमतें रही, आज वहां की मस्जिदें गिरजाघर बनी हुई, कुर्तुबा की जामिया मस्जिद, आप उसमें दो रकात नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, जिसके सुतून 9999, अल्लामा इकबाल वहां जाकर आंख के आंसू रो कर आए, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकात तुम जाकर रो कर आए, फरमाया कि दुनिया में बहुत सारी जगह गया लेकिन वहां जितना दिल दुखा शायद कहीं और दूर, ऐसे हालात रूस के इलाकों में क्या हुआ, जहां हदीस की किताबें लिखी गई, जहां हिदाया जैसी किताब लिखी गई, साहेब हिदाया ने हिदाया लिखी 13 साल में, एक मस्जिद में बैठकर लिखी, रोजे रखकर लिखी, उनको खाना आता था, लोग उनको पहुंचाते थे लेकिन वो उठाकर गरीब को दे देते थे, और रोजा रख रख के उन्होंने 13 साल में वो किताब लिखी, जिसकी मिसाल नहीं है। आज कोर्टों में जाओ आप, लायरों के पास जाओ, उनका अंग्रेजी तर्जमा उनके पास है, हमारे मसाइल को उससे वो उसकी रोशनी में हल करते हैं। ऐसी किताब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में तो मालूम ही है, बुखारी शरीफ जो उन्होंने लिखी, हर हदीस लिखने से पहले गुसुल फरमाते हैं, अल्लाह पर नमाज पढ़ते हैं, हदीसें लिखते हैं। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, ऐसे इलाके क्यों वैरान हुए, अल्लाह हम सबको माफ करे, 100 बार माफ करे। बेदार बुजुर्गों अगर अब भी बेदार नहीं हुए, हमारे अंदर अभी भी हमीयत और हिमायत दीन और गीरत दीन ही नहीं आई, तो बहुत डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। देखो बातिल की मेहनत घुन के कीड़े की सी है, हक हक है और बातिल बातिल है, हक में ताकत है और बातिल जो है वो बहुत कमजोर है। लेकिन सुनिए, बातिल की मेहनत जब मुसलसल होती है तो उसमें एक ताकत पैदा हो जाती है। उसकी मिसाल देखिए, घुन का कीड़ा, दीमक जिसको कहते हैं, घुन कहते हैं, उसकी क्या हैसियत है उस कीड़े की, एक बच्चा भी 2 उंगली से उठाकर उसको मल देता है तो मर जाता है, लेकिन क्या होता है, वो अपनी मेहनत जारी रखती है और मुसलसल एक बड़ी चौखट को वो खाते रहती है, खाते रहती है। एक वक्त आता है कि धड़ाल से एक बड़ी चौखट गिरती है, एक जोर से आवाज शोर, लोग आके देखते हैं क्या हुआ, तो देखा कि एक बड़ी चौखट गिरी हुई है। कैसे गिरी है तो मालूम हुआ कि घुन के कीड़े ने उसको खाया। अब उतनी बड़ी चौखट के सामने उस कीड़े की क्या है, क्या जो है ताकत है, लेकिन बात यह थी कि उसने मुसलसल मेहनत की, उसके नतीजे में इतनी बड़ी चौखट को उसने गिरा दिया। यही हाल है आज, यूपी का इलेक्शन हो, ये हो, वो हो, अरे क्या हो गया, यही हुआ, अपनी मेहनत में वो लगे हुए हैं, अपने इदारे कायम कर रहे हैं, अपने मराकिज कायम कर रहे हैं, अपने लोगों को बिठा रहे हैं, अपनी तंजीमें कायम कर रहे हैं, हर हर एक के अंदर वो अपनी अपनी गीरत को जगा रहे हैं, ये अपने मजहब की गीरत उनको दिला रहे हैं, उसकी बुनियाद पर खड़ा कर रहे हैं। और अल्लाह माफ फरमाए, देखते 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 हमारे मुल्क का नक्शा किस तरीके से बदलता जा रहा है, सब हो रहा है, आए दिन हो रहा है और डटकर खुलकर अलल ऐलान हो रहा है और हमको निशाना बना के हो रहा है। हम हैं कि अल्लाह माफ फरमाए, इतनी गफलत की, अल्लाह माफ फरमाए, 100 बार माफ फरमाए। दिल बहुत दुखता है बुजुर्गों, क्या बुलाकर बयानात क्या करेंगे, क्या नसीहत है, कौन सी नई बात है जो मैं बोलूं और आप नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। गीरत की बात है, एहसास की बात है, अभी एहसास नहीं जागे तो फिर क्या होगा। न दे इंसान जमाने को ए नादान, ये हवादिस तुझे ये हवादिस ही जगाते हैं, ये फितने तुझे उठाते हैं, इनसे भी इबरत न हासिल करें तो फिर हम कब हासिल करें, आखिर कब जगेंगे हम। इसलिए जागने की जरूरत है। एक जियो फोन आया, दीवाने हो गए सब, नाम भी ऐसा रखा जैसे काले बच्चे को चांद पाशा भी मुनव्वर नाम रखे सका रखा। जियो घर को नाम रखो, मरो घर को, कहां तू भी जाको मरो, पूरी पूरी रात जग लगकर, ये डाउनलोड वो डाउनलोड, ये फ्री वो फ्री, सोचने की बात है यार, जरी भी अकल नहीं है क्या, पूरी पूरी रात इंसान जागे। और अगर इबादत में जाके, ताक में जाके, नेकी में जाके कुछ तो करे ठीक है, गुनाहों में पूरी रात गुजर रही है, ये डाउनलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड कर रहे हैं, ये फ्री वो फ्री, और पूरी रात नाफरमानी में गुजरी है। अल्लाह ने रात को बनाया है सोने के लिए, वजाल्ला लैला सुबाता, आराम नहीं कर रहे हैं। अब माफ करो मेरी जुबान तेज हो जा रही है, तो दिन में फजर छोड़ के बेवारसियों की तरह सोते पड़े हैं जी, अब कहां से रहमतें आएंगी। अब अल्लाह ने बनाया है दिन को कमाने के लिए, वजाल्ला नहारा माशा, काम काम को भी नहीं जा रहे, कमाने को भी नहीं जा रहे, तो ये कौम कैसे उठेगी। इसलिए बुजुर्गों बहुत सोचने की चीज है, फितरत के खिलाफ काम हो रहा है और हम सब कर रहे हैं और ना बहुत खुश हो रहे हैं, ये फ्री है वो फ्री है। आज खुदकुशी तक इंसान कर रहा है, ब्लू वेल करके एक मुसीबत आई है, हाथा काट लेते हैं, ये कर लेते हैं, आखिर महाड़ी में जाकर ऊपर से गिरा के छोड़ता है, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, खुद करदारा इलाज है, इससे आगे बढ़कर क्या बोल सकते हैं बोलिए। इस तरीके की चीजें खोल कर रख दिए हैं दुश्मनों ने और पूरे नौजवान है कि उसी में पड़े हुए। देखो ये बस्तियां हमारा शिमाली आरकाट है, आंबूर है, वानमबाड़ी है, वेलूर है, ये बहुत अच्छी बस्तियां, बहुत अच्छा पाकिजा मुआशरा, बहुत लोग भी माशाल्लाह सब चीज। लेकिन आज देखें कितनी तब्दीली आ रही है, आप नौजवानों को देखें, जहां देखें जमात जमात खड़े हुए हैं, रोडों में, गलियों में, चौकों में, सड़कों में। अब अजान हो रही है, इकामत हो रही है, लोग नमाज को आ रहे हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, जरा बराबर भी एहसास जागता है क्या बोलो। पहले कोई अल्लाह वाले आए, बुजुर्ग आए, इमाम साहब आए तो शर्माते थे, सलाम करते थे, हट जाते थे, अदब करते थे, कुछ बाकी है क्या बोलो? कुछ भी बाकी नहीं है। और पूरे डटाई के साथ, कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ पूरे खड़े देकर हैं। और हमारा भी जमीर ऐसा मर गया है, पहले बड़े लोग तो नसीहत करते थे, कुछ बोलते थे, डराते थे, अब वो भी चीज खत्म हो गई है, क्या तुम कर लग जान दे कर। हम लोग भी ये हाल, जब बुराई इस तरीके से फैलेगी तो फिर मुआशरे का क्या हाल होगा बोलिए। तो ये सब सोचने की चीज है बुजुर्ग, ये मामूली चीजें नहीं है, ये इसके असरात बहुत दूर रस हैं, बहुत दूर तक पड़ते हैं इसके। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटा सा टुकड़ा फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन अबुदन्नास, हराम कामों से बचो तुम जमाने के सबसे बड़े परहेजगार इबादत गुजार बनो। हराम काम से बचना है, आज एक बटन दबने की देरी है हराम चीजें खुल जाती है, पूरी पूरी रात इंसान हराम में गुजार रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कान ये दिल का फोनल है, बोतल में तेल डालना हो, पेट्रोल डालना हो तो फोनल रखकर डालते हैं, जो चीज डालते हैं वो बोतल के अंदर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, अरबी में इसको कीफ बताया, उर्दू में कीफ कहते हैं, अरबी का लफ्ज में भूल रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल तक पहुंचाने वाली चीज है कान। अब आप कुरान सुनो तो दिल पे उतरेगा, आप नसीहत की बात सुनो तो दिल में उतरेगी, अच्छी बात सुनो तो भी उतरेगी। रात भर गाने सुन रहे हैं, फहश चीजें सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट दिल पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि ये चीजें बोलिए, बिल्कुल सीधी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, ये म्यूजिक इंसान के अंदर निफाक को इस तरीके से पैदा करता है जिस तरीके से पानी सब्जे और गल्ले को पैदा करता है। नहरों के किनारे खुद ब खुद गल्ला सब्जा उगता है, हरियाली उग जाती है खुद ब खुद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये म्यूजिक और ये जो आज जो भी नाम बोल लो जो मुसीबतें हैं, ये सब इंसान के अंदर निफाक को पैदा करती हैं। निफाक क्या चीज है? जाहिर में इंसान मुसलमान, नाम मुसलमान का, तौर तरीके देखने को जाहिर में मुसलमान के हैं, घराना मुसलमान का है, अब अजदाद भाई बहन मुसलमान है, लेकिन दिल में इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में, तालीमात इस्लाम के बारे में शुकूक हैं, शुभात हैं, इश्कालात हैं। कितने लोग हैं, बास तो मुंह खोल के पूछ देते हैं लेकिन दिलों में छुपाने वाले कितने हैं, उनको दीनी तालीमात के सिलसिले में इत्मीनान नहीं है। क्या आज जो तलाक का मसला उठ रहा है, हुकूमत जिस तरीके से इसको उठा रही है, क्या इसमें हमारे लोगों का दखल नहीं है? हमारी औरतें कह रही है जुल्म है, हमारे लोग कह रहे हैं इसको खत्म करना चाहिए। जब ऐसी बात रहेगी तो ये क्या निफाक की निशानी और अलामत नहीं है क्या बोलिए? ये अंदर से पैदा हो रही है चीजें ये, और दिल खोखला होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। इसलिए बुजुर्गों, अच्छे मुसलमान की निशानी क्या है? मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु माला ला, लायानी चीजों को छोड़ना, लायानी बेमतलब की, बेकार की, जिससे हमें कोई ताल्लुक नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसी चीजों को छोड़ना, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे एक मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, उसका इस्लाम अच्छा नहीं हो सकता। जब बेकार चीजों को छोड़ने का हुक्म है तो गुनाहों की चीजों को छोड़ने का हुक्म नहीं है क्या? बोलिए, तो ये तो बहुत जरूरी चीज हुई है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है जिसका नाम है गुनाह बेलज्जत। किताब का नाम ही है गुनाह बेलज्जत। ऐसे गुनाह है जिसमें कोई लज्जत नहीं है लेकिन लोग कर रहे हैं, गुनाह मोल ले रहे हैं, एहसास भी नहीं है, एहसास भी मर गया। आज देखो टखने के नीचे पहनने का रिवाज कितना हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कयामत में नजर रहमत से नहीं देखेंगे उस शख्स की तरफ जिसकी इजार हो, जिसकी लुंगी हो, जिसका पाजामा हो, जिसकी पतलून हो, पैंट हो, टखने के नीचे है। इतनी सख्त वईद है, लेकिन आम रिवाज हो गया है पहनने का, एहसास भी मर गया। अब जो है वो ये गुनाह है ये भी खत्म होता जा रहा है एहसास। फोटोग्राफी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अशद्द नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल-मुसव्विरून। क़ियामत में सबसे सख्त अज़ाब जिनको दिया जाएगा वो फोटो पकड़ने वालों को। आज मोबाइल आ जाकर, अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ करे, हरमैन शरीफैन का तकद्दुस खत्म हो गया है। एक एंटरटेनमेंट की जगह बन गई है, एक तफरीह की जगह बन गई है। अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे बदबख्त भी हैं जो रोजे अकदस पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़कर पोज देते हैं, इन्हों इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो कर पकड़ते सलाम की भी तौफीक नहीं होती, गुजर के चले जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगा जरा सोच कर देखिए। जिस नबी ने इतनी सख्त वईद सुनाई है उसी नबी के दरबार पे, उसके रोजे पे खड़े होकर इतनी सख्त जुरात इंसान कर रहा है, हराम काम कर रहा है, और नबी के ये सामने हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर मुबारक में जिंदा है। मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समीतुहु, जो मेरी कब्र पे आके मुझ पे सलाम करता तो मैं सुनता हूं। और मन सल्ला अलैया नाइया उबलिगतुहु, और जो दूर रहकर सलाम मुझ पे भेजता है वो सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक के पहुंच के पास ये हाल हो रहा है। हरमैन शरीफैन का तकद्दुस खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु, ये उम्मत खैर पर उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक के वो इस घर के तकद्दुस का एहतराम, उसका लिहाज करेगी, और जब ये उसको जाया करेगी तो हलाक हो जाएगी। ला तज़ालु हाज़िहिल उम्मतु बिखैर मा अज़्ज़मू हक़्क़ तअज़ीमिही फ़इज़ा ज़य्यऊ हलकू। जब हरमैन का, काबतुल्लाह का जब तक एहतराम बाकी रहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत खैर पर बाकी रहेगी, और जब इसको जाया करेगी तो ये उम्मत हलाक हो जाएगी। हम अपने हाथों हलाकत मोल रहे हैं, वहां जाकर भी हमको नेकी की तौफीक नहीं हो रही, वहां जाकर भी हमारे फराइज छूट रहे हैं, फर्ज नमाजें हमारी छूट रही, और दुनिया भर की बला बदर की चीजें ये वो इसमें उसमें हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरी खरी बात फरमा दी, जब इस घर का तकद्दुस पामाल होगा तो ये उम्मत हलाक हो जाएगी। तो हलाकत के सारे अस्बाब हम मोल ले रहे हैं। इसलिए बुजुर्गों, होश के नाकुर लेने की जरूरत है, हम में से हर एक को फिक्रमंद होने की जरूरत है। अल्लाह के वास्ते अपने औलाद की फिक्र करें, अपनी फिक्र करें। को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए इस मोबाइल की मुसीबत से बचाओ। हमारे हजरत तो फरमाते हैं, अब ये सेलफोन नहीं हेलफोन हो गया है, जहन्नम का कॉल, जहन्नम का फोन। एक एक मिस कॉल पर, गलत कॉल पर, गलत मैसेज पर पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, सबका सुकून गारत हो जाता है जी, सब बदनाम हो जाते हैं, और रोजाना के ये वाकयात। इसलिए इससे बचाने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़ना नास, कि अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ तो तुम लोगों में सबसे ज्यादा गनी रहोगे, बेनियाज रहोगे। अल्लाह ने जिस हाल में तुम्हें रखा है, जो चीजें तुमको दी हैं उस पर राजी रहो तो तुम दुनिया में बेनियाजी की जिंदगी गुजारोगे, एहसास कमतरी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। उसके लिए दो चीजें हैं मेयार के, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इंसान सोचे और उस पर शुक्र बजा लाए तो इसके अंदर नेमतों की शुक्रगुजारी पैदा होती है। अल्लाह की दी हुई चीजें, अल्लाह ने हमको ईमान दिया, अल्लाह ने हमको इस उम्मत में पैदा फरमाया, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमको अकल दी, ये सब इसका अपोजिट सोचते जाओ। अल्लाह अगर अकल ना देते तो हम पागल होते, अगर इंसान ना बनाते तो हम हैवान जानवर होते, अल्लाह अगर हमको ईमान ना देते तो हम काफिर होते, अल्लाह ने हमको इज्जत दी वरना हम जलील होते। आज अल्लाह हमको खाना भी दे रहा है, हमको ठिकाना भी दे रहा है, पूरी दुनिया चीख रही है रोहिंग्या के मुसलमानों के वास्ते क्या हाल है, थोड़ी देर के लिए हम सोच के देखें, कितनी इज्जत की जगह हम बैठे, कितनी राहत की जगह हम बैठे, थोड़ी देर के लिए सोचें, एक नजर वहां भी हम देखें, लाखों की तादाद जंगलों में दरियाओं में भटक रही है, खाने को खाना नहीं है, सर छुपाने को ठिकाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, मासूम बच्चे तरस रहे हैं, बच्चा दूध के लिए बिलबिलाता है, माँ की छाती में दूध नहीं है, क्यों, माँ के पेट में कुछ नहीं है, खुद के लिए नहीं है तो बच्चे को क्या पिलाएगी वो, कभी इस साहिल पे जाते तो यहां से मना कर देते, उस साहिल पे जा रहे हैं वहां मना कर देते हैं, समंदर के थपोड़ों में अगर एक मोज आए बेचारों का क्या हाल होगा, समंदर की तेज तुंद हवाओं में जिनके बदनों पे कपड़ा नहीं है, हफ्ते हफ्ते वो उस तरीके से समंदरों में दरियाओं में जंगलों में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी तो हमारे ईमानी भाई, कल कयामत में वो खड़े होकर हमसे पूछे हमने अपने ईमान को बचाया, सब कुछ को छोड़ा, सब कुछ को दिया, कुर्बान किया लेकिन ईमान को बचाया, तुमने क्या किया, हम क्या जवाब दे सकते। इसलिए बुजुर्गों, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं हर घड़ी इनकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तकुन अग्नन नास, लोगों में सबसे बेनियाज तुम रहोगे। तीसरी चीज फरमाया अहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रहो, अच्छा सुलूक करो तो कामिल मोमिन तुम बनोगे। आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करना बहुत जरूरी, पड़ोसियों में घर के हों, दुकान के हों, हजर के हों, सफर के हों, सब हमारे पड़ोसी हैं, करीब के हों, दूर के हों, रिश्तेदार हों, गैर हों, सब पड़ोसी हैं। बड़ी तफसीलात इस सिलसिले में बयान की गई है। आज हमें खास तौर से सफर करते हुए अगर हमने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया तो इंशाअल्लाह ताला इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। आज हमारे सिलसिले में जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे बारे में गलत नक्शा पेश किया जा रहा है, आज हम अगर उनकी गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं, उसका इजाला कर सकते हैं, उनके शकों को शुभात को खत्म कर सकते हैं, तो वो हमारे अखलाक के जरिए से हम खत्म कर सकते हैं। ये आज बहुत बड़ी चीज बनी हुई है अखलाक के साथ पेश आना, विचारों को गलत बताया गया है और हमारे गलत अमल की वजह से, हमारे गलत अखलाक की वजह से वो इस्लाम, तालीमात इस्लाम, पैगंबर इस्लाम के बारे में ऐसा समझते हैं। तो इसलिए अखलाक की बहुत बड़ी जरूरत है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों तुम अपने ईमान पर मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंचो कि तुम्हारे अखलाक को देखकर लोग ईमान तक पहुंचे। मशहूर वाकया है, एक बस भरी हुई थी, सब लोग खचाखच भरे हुए हैं, एक गैर जोड़ा उसमें चढ़ा, शौहर ने टिकट निकाल, टिकट लेने के लिए पैसे निकाले, वो नोट फटी थी, पुरानी थी, जो भी थी, कंडक्टर ने मना कर दिया कि ये नहीं चलेगी, दूसरी दो। अब वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं है तो उतर जाओ, ये बेचारा बहुत मेहनत समाजित कर रहा है कि भाई नहीं है यही है, वो कह रहा है कि नहीं ये नहीं लूंगा, उतर जाओ। पूरी बस भरी हुई है, एक मुसलमान आगे बढ़ता है, उस नोट को लेकर दूसरी नोट देकर उनको टिकट दिला देता है, बस वो गए जहां जाना था और उतरे और फौरी वो वहां से सीधा अस्पताल गए। उस औरत को लेबर पेन शुरू हो चुका था, زچگی کا درد شروع ہو چکا تھا، وہ ہسپتال جا رہے تھے ایڈمٹ ہونے کے لیے، ایسے وقت میں یہ صورتحال پیش آئی، وہ گئے اور وہ ایڈمٹ ہوئے اور ان کی زچگی ہوئی. اس کے بعد اس عورت نے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں بولتی ہوں، آپ کو پسند ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی مرضی ہے. اس نے کہا کہ دیکھو پوری بس بھری تھی اور ہماری قوم کے لوگ تھے، کسی نے ہماری مدد نہیں کی، اس ایمان والے مسلمان نے ہماری اس وقت مدد کی، اگر وہ بھی ہماری مدد نہ کرتے اور اگر ہم کو کنڈکٹر اتار دیتا، میں روڈ میں راستے میں ہوتی اور میری زچگی وہاں ہو جاتی تو میری کتنی عزت خراب، میری عزت کا سوال تھا. اب جس شخص نے میری مدد کی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تو اس کا مذہب قبول کر لے، اس لیے میں مسلمان ہوتی ہوں، اب تمہاری مرضی ہے. یہ سننا تھا، شوہر نے کہا تیرے سے پہلے میں ارادہ کر لیا ہوں مجھے مسلمان ہونا ہے. دونوں مسلمان ہوئے ایک چھوٹی سی مدد پر، کچھ بھی نہیں، بس اس نوٹ کو لے کر دوسری نوٹ دی. اتنی سی بات پر ہمارے اخلاق، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، ایمان پہ محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو کہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچے، ایک واقعہ. اس لیے اس وقت اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بہت ضرورت ہے. چوتھی چیز فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسك، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. تکن مسلمہ، تو تم کامل درجے کے مسلمان بنو گے. ہم چیزیں پسند کرنے کے سلسلے میں، دنیا کی چیزیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ روٹی کپڑا مکان، یہ سب چیزیں جو ہمارے لیے پسند ہیں ہم دوسروں کے لیے پسند کریں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن دنیا سے آگے جو آخرت کا معاملہ ہے اور دنیا سے بڑھ کر دین کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں ہماری نجات ہو، ہماری خواہش یہ ہو کہ سب کی نجات ہو. چوتھی چیز، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری مغفرت ہو، ہم اپنے بھائیوں کی مغفرت چاہیں، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم چاہیں گے کہ سب سے اللہ راضی ہو، ہمارا آخرت کا مسئلہ اچھا ہو، حل ہو جائے سب کے بارے میں. ہم موت سب سے بڑی بات ہے، موت کا مسئلہ، موت ہماری اچھی ہو. فرمایا وہ اللہ والوں نے کہ جس کی زندگی اچھی ہے اس کے لیے موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے، اور جس کی زندگی بری ہے اس کے لیے موت سے بڑا برا کوئی پیغام نہیں ہے. تو اس لیے تو دنیا کے ساتھ آخرت کی ہم بھلائیاں، بہتریاں، کامیابیاں سب کے لیے چاہیں، تو ہم چاہیں کہ سب کامیاب ہوں، سب اچھے بنے، نیک بنے، ایک بنے، اللہ کے چہیتے بنے. اس سلسلے میں ہم سب کی فکر کریں. کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ وقتی ضرورت ہے، کسی کو پانی پلا دیا، ایک وقتی ضرورت ہے، لیکن کسی کو صحیح راستے پہ ڈال دیے، ہدایت کے راستے پہ ڈال دیے، یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی پر مدار ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا. تو اس لیے ہم جو ہم سے ہو سکے، جتنی خیر کی باتیں ہم کر سکیں، اچھے باتوں کا مذاکرہ کریں، اچھی باتوں کو جو ہے ایک دوسرے میں پھیلائیں، بتائیں. جو جتنی بات جانتا ہے اسی کو کہہ لیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ واس کریں، نصیحت کریں، بڑی باتیں بتائیں، جی موٹی موٹی باتیں، خیر کی تلقین، بھلائیوں کا حکم، برائیوں سے منع کرنا، بچانا، ہر ایک بھی، ورنہ ماحول خراب ہوتا جائے گا. اور ماحول ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا ماحول رہے گا تو انسان اچھا بنے گا، برا ماحول ہوگا تو انسان برا بنے گا. سردی کے ماحول میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی کے ماحول میں سب کو گرمی محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی دین کا ماحول ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور بے دینی ہوگی تو اس کا بھی اثر ہوگا. تو اس لیے بے دینی سے بچانے کی ہم سب فکر کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آخر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اس لیے غفلت ہمارے دلوں پہ طاری نہ ہو، یہ ہنسنا، کھلکھلانا، یہ غفلت میں پڑے رہنا. اللہ جل جلالہ سوال کرتے ہیں کہ ایحسب الناس ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، ہم نے انسان کو بے مطلب بے مقصد پیدا کیا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. अल्लाह ने अब हमें अपना नाइब बनाकर भेजा है जी, हमको बाइज्जत बनाया है और हमको अपनी तमाम मखलूक में फजीलत बख्शी है, और इसका ऐलान भी अल्लाह ने फरमाया। जब ऐसी बातें हैं, इतनी बड़ी नेमतों से हमको अल्लाह ने नवाजा है, तो हमारी जिंदगी बेमतलब की ना हो, बेकार की जिंदगी ना हो। तो खेल खिलाते हुए, हंसते हमेशा तमाशों में रहते हुए हम अपनी जिंदगी को गुजारें, ऐसी बात ना होने पाए। इसलिए एक फिक्र के साथ, एक अज़्म के साथ, हौसले के साथ इंशाअल्लाह ताला आज हम उठेंगे और अपनी दीन दुनिया आखिरत की बेहतरी अल्लाह से चाहेंगे। एक दुआ मैं आखिर में बता देता हूँ, या अरबी याद कर लें वरना उर्दू ही में इसको मांगते रहें तो इंशाअल्लाह ताला बड़े नफे की चीज़ होगी। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्रिना। अल्लाह हमारे दीन को बेहतर बना जो हमारा सरमाया है, जो हमारा असल है, मुदल है, कैपिटल है, जो असल हमारी पूंजी है, इसको बेहतर बना। वह असलह लना दुनिया न लतीफी हा माशुना। अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना जहां हमको रहना है। आज देखिए सब परेशान है, कोई बीमारी की वजह से, कोई कर्जदारी की वजह से, कोई परेशानी की वजह से, हर लाइन की परेशानियां हैं। तो अल्लाह से फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना जहां हमको रहना है। हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हमारे साथ घर बार है, कारोबार है, सब चीज़ें लगी हुई हैं। अल्लाह इसलिए हमारी दुनिया को बेहतर बना। वह असलह लना आखिरतना लतीफ़ीहा माशुन मादुना। अरे अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर बना जहां हमको लौट के जाना है। तो इसमें दीन दुनिया आखिरत तीनों की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। वजालिल हयात ज़ियादतन लना फी कुल्ली खैर। अल्लाह हमारी जिंदगी को हर खैर की ज्यादती का सबब और जरिया बना। वजालिल मौत राहतन लना मिन कुल्ली शर। और हमारी मौत को तमाम बुराइयों का खात्मा बना। हम जब तक रहें हमारी जिंदगी से खैर वजूद में आए, और जब हमारा खात्मा हो तो तमाम शर ये खत्म हो। लोग कितने हैं मर के जाते हैं लेकिन शर का सिलसिला चलता रहता है, बुराइयों के अड्डे बना दिए, नाफरमानी की जगह बना दी। वो तो गए हैं, सबको तबाह करके गए हैं, उनकी जिंदगी भी शर रही, उनकी मौत भी शर रही। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इस तरीके से एक नए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, इरादे के साथ कि हम इंशाअल्लाह ताला लायानी से बचेंगे भाई, नौजवान बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या जरा हिम्मत करो, गलियों में खड़े रहना, देखते रहना अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी बात मालूम होती। सबसे बढ़कर एक हया एक चीज है, नहीं क्या बोलो, वो भी चले गई तो कैसा बोलो, क्या छे बाकी। हाँ, बड़ों छोटों का अदब नहीं है। कोई पूछा करते दादा कहते हजरत, अब दादा तुम्हें कैसे थे तुम्हारे जमाने में, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, एसी नहीं था, कार नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं थे, तुम्हें कैसे थे। उन्होंने बोले तुम्हें कैसे ही, नमाज नहीं, रोजा नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, छोटे बड़ों की इज्जत नहीं, तुम्हें कैसे ही कि वैसे हमें थे। अगर बोले वैसा हाल हो गया है, पूरी चीजें खत्म हो गई। तो इसलिए हजरत लुकमान हकीम गुलाम थे, बकरियां चराते थे, काले फाम थे, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने उनकी नसीहतों को कुरान में बयान किया। उनके नाम से सूरा है, सूरह लुकमान। खैर, इमाम मालिक रहमहुल्ला अपनी किताब मुअत्ता में नकल करते हैं, एक शख्स ने देखा कि एक बड़ा मजमा लगा है, लोग बहुत अदब के साथ बैठकर बात सुन रहे हैं और एक साहब कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। वो जरा गौर से देखा, करीब हुआ, उसने करीब होकर उनसे पूछा, क्या आप वही नहीं है, वही शख्स नहीं है जो मेरे साथ बकरियां चराया करते थे। उन्होंने कहा कि जी मैं वही हूं। बोले तो मौत्ता इमाम मालिक की इबारत है, तो कैफा, वो पूछता है कि कैसे, मां बलगा विका, ये जो मकाम व मर्तबा तुझे मिला है वो कैसे मिला है, इस मकाम व मर्तबे पे तुम कैसे पहुंचे हो, उसने सवाल किया। एक बकरियां चराने वाला गुलाम, आज अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई, ये मकाम अता फरमाया, तो कैसे। तो उन्होंने तीन बातें इरशाद फरमाई, जुबान की सच्चाई, अमानत की अदाई, लायानी से परहेज। मैंने झूठ नहीं बोला, सच्चाई को अपनाया, अमानत में खयानत नहीं की, اور لایانی سے میں بچا رہا, اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم ایسے بندوں کو دیکھو جن کو صدق مقال, سچی بات بولنے, امانت کی حفاظت کرنے کی اور لایانی سے بچنے کی نعمت اور دولت اللہ نے کس اگر ان کو عطا کی ہے, صدق, قلت کلام, کم بولنے کی دولت سے اللہ اگر ان کو نوازے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقتریبو, ایسے لوگوں کے قریب ہو جاؤ, ان پر حکمت اللہ ڈالتے ہیں, ان کی باتوں سے حکمت چھلکتی ہے, ان کی باتوں سے تمہاری زندگیاں بدلتی ہیں, ایسوں کے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.